परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, चलता रहूं मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता ले चल प्रभु तू मुझको वहां, तेरी स्तुति सदा होती जहां। ले चल प्रभु तू मुझको
तेरे लिए गाता रहूं मैं तेरे ही गीत। मेरी मंजिल हो तुम। प्यार हो तुम ही मेरे जीवन, की हर खुशी प्यार हो तुम हर खुशी मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे उन भाइयों का जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने पत्रों को हम तक पहुँचाते हैं, अपनी आशीषों को हमें बांटते हैं। मैं उन श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम को सुने, आशीषों को प्राप्त करें और हमारे साथ अवश्य बांटें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में पौलुस ने हमें निर्देश दिए हैं कि एक विश्वासी होने के नाते मेरा संबंध इस संसार में किसके साथ कैसा हो। अब इस अध्याय में जो रोमियो की पत्री का अंतिम भाग है, परमेश्वर के पुत्रों के पृथकीकरण की चर्चा की गई है। पृथकीकरण का अर्थ यहाँ क्या है? सच कहूँ तो मैं पृथक और समर्पित विश्वासियों से ऊब गया हूँ, क्योंकि वे वास्तव में न तो पृथक हैं और न ही समर्पित हैं। मेरे मित्रों, मसीही आचरण के दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र में बाइबल अति स्पष्ट व्यक्त करती है, जैसा हमने इससे पूर्व के क्षेत्र में देखा है। सरकार के प्रति विश्वासियों का कर्तव्य है कि वे अपने शासकों के अधीन रहे, उसे नियमों का पालन करें और कर भी चुकाए और अधिकारियों का सम्मान करें। अध्याय 13 में एक बात और स्पष्ट की गई थी और वह थी पड़ोसियों के साथ संबंध, जिसके बारे में हमने देखा था, और अब उसे अपने भुगतान से नहीं चूकना है, उसे वे विचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठी गवाही नहीं देना है, पड़ोसी की वस्तुओं की लालच भी नहीं करना है। और सच तो यह है कि आपको अपने पड़ोसी से अपने बराबर यानी कि अपने समान प्रेम रखना है। विश्वासी को सत्यनिष्ठ होना है, भोग बिला से दूर रहना है, नशा नहीं करना है जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं, कलह और ईर्ष्या से बचना है। इन बातों पर तो बाइबल अति स्पष्ट है और आज मुझे और आपको चाहिए कि हम इसका अनुसरण करें। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बहुत सारे मुख्य बातों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, अपने मित्रों से प्रेम रखें और आपके वचन का पालन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता मित्रों को अपनी आशीष प्रदान करें, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण बनने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार के तनाव में घिरे हुए हैं। आप उनकी सहायता करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें धैर्य और हिम्मत प्रदान करें। आप ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, अब मसीही विश्वास का एक और क्षेत्र है जिसके संदर्भ में बाइबल स्पष्ट नहीं है। मैं यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ, तंबाकू सेवन एवं स्त्री पुरुष का एक साथ तैरना। यदि आप मुझसे सहमत ना हो तो मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मेरे मित्रों, एक नव दंपत्ति विवाह के पश्चात एक साथ तैर रहे थे और जब मेरी पत्नी ने उन्हें देखा वह भौंचक कर रह गई। वह 24 घंटे तक इस घटना से परेशान रही। दूसरी ओर उसकी कलीसिया के पदाधिकारी वरन उसका पासवान या प्रचारक भी धूम्रपान करता था, परंतु हमारी कलीसिया में धूम्रपान करना अस्वीकार्य था। क्या स्त्री पुरुष का एक साथ तैरना एक स्थान पर स्वीकार्य है और दूसरे स्थान पर अस्वीकार्य है? मेरे मित्रों, क्या धूम्रपान एक स्थान पर स्वीकार्य हो सकता है और दूसरे स्थान पर अस्वीकार्य हो सकता है? कुछ पवित्र जन कहेंगे कि मैं स्त्री पुरुष का साथ तैरना छोड़ धूम्रपान पर भाषण दूंगा, तो क्या उचित होगा? जी नहीं, मैं न तो इसको और न उसको दोष दे रहा हूं। मैं पौलुस से बढ़कर अपनी नाक प्रश्नाधीन विषयों पर नहीं भड़काऊंगा, अर्थात नहीं अड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, इस भाव में पौलुस प्रश्नाधीन विषयों में विश्वासियों के आचरण के लिए नियम निर्धारित करता है। वह हमारे मार्गदर्शन हेतु तीन बातें कहता है, पाप का बोध होना, विवेक और दूसरों पर प्रभाव। एक विश्वासी को अपने कर्मों के बारे में पूर्व विचार रखना चाहिए। उसे सोचना है कि जो वह करने जा रहा है क्या वह ठीक है, उसमें उस काम का जोश है। दूसरा है विवेक, जो उसने किया है उसके बारे में वह सोचे कि वह सही था या गलत था। क्या वह अपने काम के लिए स्वयं से घृणा करता है? और तीसरी बात है सोचना कि उसके व्यवहार का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके काम का प्रभाव किसी पर बुरा पड़ा है। ये तीन पथ दर्शन बिंदु हैं जिसे हमें पौलुस बताता है और ये हमारे लिए मसीही आचरण के सिद्धांत प्रदान करती है। मेरे मित्रों, हमारे आज के दिन में मसीही आचरण के प्रश्नाधीन विषय में दो चरम धारणाएं हैं और इनके कारण मसीही आचरण के निमित्त विश्वासियों के लिए एक कृत्रिम वातावरण तैयार हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप इन आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारे विश्वासी अनियमित या विरूप हो गए हैं। एक सीमा तो यह है कि संसार से अलग करने वाली दीवार अब नहीं रही। इन विश्वासियों का जीवन संसार के उदार रहित मनुष्यों की नकल है। उनका जीवन मन परिवर्तन से पूर्व की स्थिति में से भी भिन्न नहीं रहा है। वे हर प्रकार की संसारिकता में लीन है, अर्थात हर प्रकार के कामों को करते हैं। वे उन सब स्थानों में जाते हैं जहां संसार जाता है और उन कामों में अपना समय एवं ऊर्जा एवं पैसा व्यतीत करते हैं जिनसे आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। उनके लिए धर्मशास्त्र के कुछ संदर्भ अर्थ ही नहीं रखते हैं, जैसे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 17-19 पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग सांसारिकता में मन नहीं लगाते हैं, परंतु वे भी अधिक से अधिक सांसारिक होते हैं। वे पेटू होते हैं और वे ठूस ठूस कर स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते हैं। वे शराब तो नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग पीते हैं, पीते परंतु पेटूपन से नहीं चूकते हैं। वे व्यर्थ की बातें भी बहुत करते हैं, वे अनुचित कहानियां भी सुनाते हैं और कई जगह पर आजकल इस प्रकार के कुछ नशे की आदि हमारे जवानों को भी लग चुकी है। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद से पौलुस का संदर्भ देता हूँ। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रियो, आपके विचारों का जीवन आपके आचरण को प्रभावित करता है। आज हो या कल, आप जो कुछ भी सोचते हैं वही अंततः आप करेंगे। मैंने यह देखा है कि विश्वासी किसी परीक्षा में पढ़ने से पूर्व उस परीक्षा के बारे में बहुत लंबे समय से सोचते रहते हैं। ऐसा अनेक कथित विश्वासी करते हैं। पौलुस उनसे प्रश्न करता है कि वे क्या विश्वासी हैं, क्योंकि वे तो एक सांसारिक मनुष्य की नाई व्यवहार करते हैं। मेरे मित्रों, अब एक समूह ऐसा है जो इसके सर्वथा विपरीत सीमा पार करता है। उन्होंने मसीही जीवन को मत करो की श्रृंखला में बांध रखा है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। मेरे मित्रों, ये लोग अनुग्रह से प्राप्त उद्धार और मूसा की व्यवस्था से मुक्ति का आनंद लेते हैं, परंतु वे तुरंत ही 10 आज्ञाओं की नया व्यवस्था तैयार कर लेते हैं, वरन उनसे दोगुना अधिक नियम भी बना लेते हैं। वे अत्यधिक आत्म केंद्रित, अति आलोचनात्मक और घमंडी हो जाते हैं। इन्हें पद 1 में पौलुस विश्वास में निर्बल कहता है। ये ही वे लोग हैं जो संसार से अलग रहना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मैं एक पत्र पढ़ रहा था और मैं आपको सुना रहा हूं जो ऐसे मनुष्यों की दुखद गाथा का वर्णन करता है। कुछ समय पहले मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है। मैं 3.5 वर्षों से विश्वास में हूं और मैंने हाल ही में अपने उद्धार की ज्वलंत गवाही दी है, परंतु अब मैं ऐसा निर्जीव हूं कि मुझे मसीह को दूर ऊपर और मैं स्वयं यहाँ नीचे प्रतीत होता हुआ देखता हूँ। मुझमें एक विश्वासी के सब गुण हैं, अर्थात मैं धूम्रपान, शराब, जुआ, सिनेमा या अन्य बातें नहीं करता हूँ, परंतु मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मेरी सहेलियाँ या मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मुझ में कड़वाहट पनप रही है, ओह मैं इससे बचना चाहती हूँ। मेरे मित्रों, विश्वास के आने से पूर्व मैं महत्वाकांक्षी थी, विश्वास में परिश्रमी थी, परंतु अब मैं सोचती हूँ कि इसका क्या लाभ। संसार तो बद से बदतर होता जा रहा है, तब कुछ विनाश की ओर अग्रसर हैं और एकमात्र आशा है मसीह के आने की प्रतीक्षा करूं। मेरे मित्रों, यह स्त्री दुर्दशा में थी। ध्यान दे कि वह कितनी अलग थी, परंतु इस अलगाव से जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होता है। संदिग्ध मसीही आचरण की इन 2 चरम सीमाओं के मध्य कहीं मसीही विश्वासी को जीवन जीना है। विश्वासी की अपने जीवन की नींव या नाव दोनों संकट में पड़े हुए हैं, अर्थात बीच में हैं। मैंने इन आरंभिक टिप्पणियों के लिए बहुत समय ले लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुविधा में पड़े विश्वासियों की कमी नहीं है, परंतु वे इस अध्याय में दी गई पौलुस की शिक्षा से सहायता पाएंगे। तो आइए हम रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। मेरे मित्रों, इसे दूसरे तरह इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अब जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी सहभागिता में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं का न्याय करने के लिए नहीं, अर्थात उसके विचारों और उसके आचरण पर उंगली उठाने के लिए नहीं। मित्रों, यह अध्याय 13 से जुड़ा हुआ है। अब प्रेम की व्यवस्था सक्रिय होती है और अध्याय 13 के अंत में पौलुस ने अनैतिक एवं अनुचित बातों का खंडन किया है। वे विचार, चोरी, झूठी गवाही, लालच और अब वह संदिग्ध विषयों का खंडन करता है। मेरे प्रियो, जो धर्मशास्त्र में निश्चित रूप से वर्जित नहीं है, जो विश्वास में निर्बल हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि धर्मशास्त्र के महान सत्यों में निर्बल हैं। यहाँ वह विश्वास के अदृश्य गुणों के विषय में कहता है। इसका अर्थ है कि निर्बल जन का विश्वास डगमगाता है और आचरण के विषय दुचित्ता होता है। वह कुछ बातों में निश्चित नहीं है कि क्या करना आवश्यक है। ऐसे मनुष्य का विश्वासियों की सहभागिता में हार्दिक स्वागत करना चाहिए। कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से विश्वासी और कमजोर हो जाते हैं। मेरे मित्रों, आप उसके विचारों से सहमत न हो, परंतु आपको उसे ग्रहण करना है। परंतु जब वह मसीह यीशु को ग्रहण कर चुका है, तब आप उसे इसलिए ग्रहण न करें कि संदिग्ध विषयों में उसके साथ वाद विवाद करें। विश्वासियों का एक समूह आचरण के विषय दूसरे समूह का न्याय न करे। कुछ बातें धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है, तथापि कुछ विश्वासी उनसे दूर रहते हैं। जो उन्हें करना चाहें वह उनकी अपनी इच्छा है। मेरे प्रियो, इन बातों के कारण विश्वासियों में विभाजन न हो। स्कोफील्ड की बाइबल में एक सहायक टिप्पणी दी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में कलीसिया को अधिकार नहीं कि वह धर्मशास्त्र के अस्पष्ट बातों के बारे में अपना निर्णय दे। जी हाँ, यह बहुत हद तक सच है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। मेरे मित्रों, यह पद अतिवादियों को दुख पहुंचाएगा। विश्वास में दृढ़ भाई सब कुछ खाता है, परंतु निर्बल विश्वासी केवल साग पात खाता है। दृढ़ विश्वासी मानता है कि मरकुस रची सुसमाचार 7 अध्याय उसके 19 पद के अनुसार यीशु ने सब खाद्य सामग्री शुद्ध कर दी है। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 में जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर ने सब प्रकार के मांस खाने की अनुमति दे दी थी। शुद्ध और अशुद्ध में अंतर केवल इसराइल के लिए था। ज्ञानवान विश्वासी जानता है कि यह उसके लिए नहीं है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। आपको स्मरण होगा कि याफा के शमौन चर्मकार के घर की छत पर परमेश्वर ने पत्रस को यह प्रयोगात्मक पाठ सिखाया था, जिसे हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 से 16 पद में पढ़ते हैं। पत्रस भोजन के शुद्धता के विषय पृथक एवं घमंडी था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 15 पद में परमेश्वर ने उसे चिताया कि वह परमेश्वर द्वारा शुद्ध की गई भोजन वस्तु अशुद्ध न कहे। जी हाँ, पौलुस का विवेक उसे मांस खाने के लिए दोषी नहीं ठहराता था, परंतु पत्रस के मन में शंका थी। शाकाहारी विश्वासी मांस से घृणा करेगा। यहाँ सिद्धांत क्या है? एक विश्वासी मांस खा सकता है और दूसरा नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से दोनों मांस खा सकते हैं। सुनिए पौलुस क्या कहता है। रोमियो के पत्री 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर कुछ दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। मित्रों, मैं जानता हूं कि इन अतिवादियों को अस्वीकार करने पर मैं न्यायोचित नहीं हूं। यदि वे ऐसा ही रहना चाहते हैं तो यह उनकी इच्छा है। जिस बात से मैं विचलित होता हूं वह यह है कि वे मुझे सुधारना चाहते हैं। निसंदेह मुझे सुधार की आवश्यकता है, परंतु यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है। मेरे मित्रों, यहां मांस उन सब बातों का एक उदाहरण है जिनके विषय धर्मशास्त्र स्पष्ट निर्देश नहीं देता है। कोई किसी का न करे। मेरे मित्रों, यदि आप मांस खाना चाहते हैं तो खूब खाइए, परंतु यदि आपका विश्वास यह है कि मांस खाना उचित नहीं है तो आप उसे मत खाइए। परंतु यदि आपका मित्र खाता है तो आप उसे मत रोकिए, आप उसे खाने दीजिए। यही हमें बताया गया है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह एक प्रबल निर्देश है। पौलुस पूछता है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। मेरे प्रियो, संदिग्ध विषयों में किसी के आचरण पर उंगली उठाने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। क्या आप परमेश्वर हैं? क्या वह मनुष्य आपको लेखा देगा? पौलुस कहता है कि वह आपको नहीं परमेश्वर को लेखा देगा। वह अपने स्वामी के समक्ष खड़ा होगा। यदि आप किसी के घर भोजन करने गए हैं और वहां उसके सेवक ने ठंडा खाना परोसा, तो आप उस सेवक को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। वह आपका सेवक नहीं है, उसकी यह चूक थी, यह उसकी गलती थी, परंतु आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है। उसका स्वामी इस विषय पर उस पर विचार करेगा। मेरे मित्रों, अति संभव है कि आप मेरे आचरण पर उंगली उठाएं, परंतु मुझे आपको लेखा नहीं देना है। जी हाँ, मैं मसीह यीशु के समक्ष लेखादाई हूँ। वह मेरा स्वामी है और मुझे इसका हिसाब उसे अवश्य ही देना पड़ेगा। आज आप किस प्रकार का लेखा तैयार कर रहे हैं? क्या आज आप किसी पर दोष लगाने का या किसी का न्याय करने का लेखा तैयार कर रहे हैं? मेरे मित्रों, आज हमें पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार हमें अपने खाने पीने, उठने बैठने और आचरण पर विचार करना है और किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु के निकटता में बनाए रखना है। आज आप निर्णय लें। आप अपने आप को झांक करके देखें कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी व्यक्ति कुछ भी खाता है, इस खाने पीने से कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं करता और न ही वह नाश होता है, परंतु यह आपके ऊपर में है कि आप अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने लोगों का आदर करें और इसके द्वारा से आप परमेश्वर को महिमा देंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा भी आज आपने अपने जीवन में नई आशीषों को प्राप्त किया है। आप हमें पत्र लिखकर के अवश्य बताएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
छू ले मुझे, सामर्थ्य से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे